लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छठे नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। बेल्जियम के जेसुइट मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स ने अथक परिश्रम एवं त्याग से छठे नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहां के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। निराशा और पीड़ा भरे समाज में न्याय, समानता एवं मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठने लगे। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लेबन्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें और समाज को बेहतर बनाएं। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि फादर लेबन्स ने लोगों को किस तरह अंधविश्वास से छुड़ाया। आज हम बीरू और बारवे में उनकी यात्रा का विवरण सुनेंगे। रांची के निकटवर्ती क्षेत्र में यात्रा समाप्त करने के बाद फादर लेबन्स फादर डेहोन के साथ बीरू भ्रमण के लिए निकले। दोनों ने मिलकर पूरे बीरू क्षेत्र का दौरा किया। फादर लेबन्स का उस सुदूर क्षेत्र में पहुंचना बहुत लोगों का ध्यान खींच लिया, जहां जमींदारों ने अब तक गांव वालों का बहुत अधिक शोषण किया था। फादर लेबन्स जो उम्मीद लेकर बीरू दौरा में निकले थे, वह पूरा नहीं हो पाया। वे अधिक लोगों को बपतिस्मा नहीं दे पाए। उन्होंने पाया कि जमींदारों से बचने के लिए लोगों में बैर और जिद्दी भावना थी, जैसा उन्होंने पहले नहीं देखा था। उन्हें डर लगा कि यदि अभी बपतिस्मा दे दिया जाए तो भविष्य में खतरा हो सकता है, अतः उन्होंने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया। 800 परिवार जो ख्रिस्ते बनने के लिए तित्रा आए हुए थे, उन्हें घर लौटने पर काफी कठिनाई हुई। उनके बीच कोई प्रचारक नियुक्त नहीं किए जा सके एवं जमींदार उन्हें भागने के लिए मजबूर करते रहे। नए ख्रिस्तों को धमकी और उपवास का सामना करना पड़ रहा था। फादर लेबन्स का आना लोगों के बीच हलचल मचा दिया। लोगों ने बड़ी संख्या में बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए नाम लिखाया, किंतु उनका आना शक्तिशाली जमींदारों में भी हलचल मचा दिया। जमींदार अपनी ओर से तुरंत कदम उठाने और बदला लेने का विचार करने लगे। बीरू में सभी ओर एक ही आवाज सुनाई देने लगी, ख्रिस्ते बनने देने की अपेक्षा हम तुम्हें मार डालेंगे। जमींदारों ने नए ख्रिस्तों को वापस अख्रिस्ते बनाने के लिए अपने आदमी भेजे। इधर फादर लेबन्स इन नए अनुगामियों को हिंसा में टूटते देखना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने उन्हें सिर्फ उम्मीदवार के रूप में नाम दर्ज किया एवं आश्वासन दिया कि वे उन्हें धर्म शिक्षा देने के लिए प्रचारकों को भेजेंगे। फादर लेबन्स की यात्रा के बाद 3 प्रचारक भेजे गए, किंतु वे वहां नहीं टिक पाए। उन्हें जमींदारों के द्वारा जबरदस्त भगा दिया गया। मॉरिस गांगो, जो मिशन का एक बड़ा साहसी प्रचारक था, उसने वहां जाने की कोशिश की। जब वह बीरू पहुंचा तो जमींदारों के आदमियों ने उससे खूब पीटा, फिर भी वह वहीं रुका रहा। उसने स्पष्ट बतला दिया कि वह ना तो स्वेच्छा से और ना ही जबरदस्ती करने पर वापस जाने वाला है। उसने कुछ मजबूत और साहसी आदिवासी युवाओं को जमा किया। मॉरिस गांगो की उपस्थिति में, जो एक सज्जन और दयालु व्यक्ति था, जो झगड़ों को शांत करने हेतु अपने विवेक के लिए जाना जाता था, युवा दल मजबूत बना रहा और ख्रिस्ते नए साहस एवं शांति से प्रेरित हुए, किंतु यह स्थिति अधिक समय के लिए नहीं रह पाया। 16 अक्टूबर 1889 को बारहवें की पहली यात्रा के लिए फादर लीबन्स अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उस जिला में करीब 35,000 जनसंख्या थी, जिनमें से अधिकांश लोग उराव थे। रांची से 30 घंटे की दूरी पर स्थित इस पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा मिशनरियों ने कभी नहीं की थी। बारहवें में पहले से ही करीब 100 बपतिस्मा प्राप्त ख्रिस्ती थे। कैथोलिक मिशन के साथ उनका संपर्क एक साल पहले से ही रहा था। नवाढ़ी के निकट बिर्री गांव के उरांव युवा रांची कोट गए हुए थे, जिन्होंने नोआगढ़ के ख्रिस्तों से मुलाकात की थी, और वे जब रांची पहुंचे तो उन्होंने फादर लीबन्स की मदद मांगी थी। उन्हें धर्म शिक्षा दी गई थी और उनका नाम उम्मीदवार के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने फादर लीबन्स की सलाह एवं समर्थन से केस जीत लिया था। उनकी सफलता की खबर ने बारहवें में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास की सच्चाई को सुना, प्रार्थना सीखा और बपतिस्मा ग्रहण किया। एक साल के अंदर करीब 1,000 परिवारों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। उन्हें रांची में धर्म शिक्षा दी गई और बपतिस्मा दिया गया। सीखने के मामले में बारहवें के लोगों का उत्साह दूसरों से खास था। वे अपने घर वापस गए और उन्होंने दूसरों को वह सब कुछ बतलाया जो उन्होंने रांची में सीखा था। फादर लीबन्स ने विश्वास की बातों को बतलाने और सिखाने में अत्यंत उत्साही 3 उराव प्रचारकों को उनके बीच भेजा। उन्होंने लोगों के बीच जाकर कैथोलिक धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर जमींदारों के शोषण से छुटकारा, बुरी आत्माओं से सुरक्षा तथा खेतों एवं मवेशियों पर आशीष दिलवाने के लिए। इस तरह पूरे बारहवें के लोग प्रचारकों के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। अब बारहवें में भी ख्रिस्ती धर्म में प्रवेश करने का आंदोलन शुरू हो गया था। हजारों लोग इस आशा से रांची आने लगे थे कि वे नई प्रार्थनाओं को सीख सकें, विश्वास की बातों को जान सकें, और जब वे घर लौटते थे तो खुद जो वे सीखे होते थे उसे गांव के लोगों को सिखलाते थे। प्रचारकों पर भी उनका पूर्ण विश्वास हो गया था। फादर लीबन्स की सलाह पर ध्यान देते हुए अब प्रचारकों ने हर एक गांव में एक चपरासी या प्रार्थना सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस तरह हम देखते हैं कि छटनागपुर मिशन में फादर लीबन्स को बड़ी सफलता मिली, जबकि कई बाधाओं के कारण असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। फिर भी वे धीरज पूर्वक प्रभु के कार्य में डटे रहे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर लीबन्स एवं छटनागपुर कलीसिया की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
मार्गम सत्यम जीवन येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु मार्गम सत्यम जीवन येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु सच्चाई का दर्पण येसु सारे जग का जीवन येसु सच्चाई का दर्पण येसु सारे जग का जीवन येसु।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक कटुता। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, लोग अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि वे उस इंसान को नहीं भुला सकते जिसने उनके साथ कुछ गलत किया है। कुछ तो इतना तक कहते हैं कि मैं मरते दम तक उस इंसान को माफ नहीं कर सकता। वे ऐसा मानते हैं कि अपने अंदर मौजूद दर्द और धोखा को भूलना उनके लिए असंभव है। उनके जीवन में मिला दर्द हो सकता है अपने जिगरी दोस्त से, अपने प्रेमी से या परिवार के प्रियजनों से मिला हो। कई तो सालों साल अपने मन रूपी संदूक में दर्द और कटुता को ताला लगाए बैठ जाते हैं या उनसे बदला लेने के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बदले की भावना भी महंगा सौदा है? ये आपको बीमार बनाता है, आपको कमजोर बनाता है और आपके किसी भी तरह के दुश्मन से ज्यादा ताकतवर है। शेक्सपियर ने कहा था, अपने दुश्मन के लिए नफरत की भट्टी को इतना तेज मत करो कि आप खुद ही उसमें जल जाओ। किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपने जिन नकारात्मक भावनाओं को पनाह दी है, उन सभी को अपने अंदर से बाहर निकालकर फेंक दें। इसी में आपकी भलाई है, उन्हें क्षमा कर दें। अगर आप उस व्यक्ति को क्षमा करने का निर्णय लेते हैं जिसने आपको कष्ट दिया है, तो इस निर्णय से किसी और को लाभ होता है तो वो सिर्फ आप हैं। क्षमा की भावना एक चुटकी बजाते नहीं पनपती, इसके लिए आत्मसंयम, लगन, दृढ़ता और उन सबसे ऊपर समय की आवश्यकता होती है। आप अपने विश्वास और रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करें, विशेष रूप से जब आपका सामना परिवार के किसी सदस्य से हो रहा हो। आखिर में सिर्फ प्रेम, हमदर्दी और क्षमा ही मायने रखता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका कटुता।
मम्मी, अब हमने छिपकर तो कुछ नहीं किया ना? अमित ने अपनी मम्मी जया को सब कुछ बता दिया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और यह भी नहीं छिपाया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
वीणा बेटा, मानती हूँ कि तुमने और अमित ने अपने अपने घर में सब कुछ बता दिया और हमसे कुछ नहीं छुपाया। यह बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैं अमित से तुम्हारी शादी के लिए भी तैयार हूँ।
मम्मी, आप तो शादी के लिए तैयार हैं, मगर अमित की मम्मी को न जाने किस बात की खुन्नस है हमसे कि हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही है। आखिर न जाने कौन सी और क्या बात है मम्मी?
बात क्या है बेटा, एक गलत फहमी है बस।
ऐसी कौन सी गलत फहमी है जया आंटी को?
बेटा, किसी समय मैं और अमित की माँ जया एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे।
सच मम्मी? फिर
मैं और तुम्हारे पापा भी एक दूसरे को वैसा ही चाहते और पसंद करते थे जैसे तुम और अमित एक दूसरे को पसंद करते और चाहते हो।
फिर
क्या बेटा, जया भी तुम्हारे पापा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन ये पसंद करना और चाहना एक तरफा ही था, क्योंकि तुम्हारे पापा सिर्फ मुझे ही चाहते थे। कॉलेज में जब तक रहे जया मुझसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हुई तब से जया मुझसे बात ही नहीं करती। उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि उसका मानना है कि तुम्हारे पापा को मैंने उससे छीन लिया। बस तभी से वह मुझसे नाराज रहने लगी है।
क्या मम्मी, जया आंटी भी अभी तक कॉलेज के दिनों में ही जी रही है? बरसों पुरानी बात को लेकर वह आज भी घूम रही है? जब जिन पापा की वजह से वह आज भी आपसे कटुता रखती हैं, वह पापा भी अब हमारे बीच नहीं रहे?
अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा।
शिखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी में मेरी मम्मी इतनी बाधा डाल रही हैं, तो कहीं हमें कोर्ट मैरिज ना करनी पड़ जाए।
नहीं अमित, तुम कुछ भी बोलो, कोर्ट मैरिज के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये भी कोई शादी हुई यार? चार लोगों के साथ हम कोर्ट गए और वहाँ एक दूसरे को हार पहनाकर रजिस्टर में शादी कर शादी हो गई। ये भी कोई शादी है यार?
मगर इसके सिवा चारा भी क्या रह गया अब?
अच्छा अमित, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मी क्यों हमारी शादी के खिलाफ है।
तुम क्या जानती हो क्यों खिलाफ है मम्मी?
मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि जया आंटी और मेरे मम्मी पापा ये सभी एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरी मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उधर तुम्हारी मम्मी भी मेरे पापा को बहुत पसंद करती थी। लेकिन पढ़ाई के बाद जब मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई तो जया आंटी ने मम्मी से यह सोचकर कटुता पाल ली कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को उनसे छीन लिया है। बस तब से ही जया आंटी ने मेरी मम्मी से बातचीत ही बंद कर दी है।
ओह, तो यह बात है।
हाँ,
तभी तो मैं सोचा करता था कि मैं अच्छा वाला कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी है मेरी, तुम भी अच्छा कमा रही है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, फिर तकलीफ किस बात की है?
आंटी ने मन में मम्मी के लिए जो कटुता पाल रखी है वही कटुता ही आंटी को हमारी शादी में बाधा बना रही है।
तुम सही कह रही हो शिखा, लेकिन क्या अगर हमने मम्मी की मर्जी के विरुद्ध शादी की तो क्या तुम तैयार हो?
हाँ अमित, मैं तो तब भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं आंटी और अंकल दोनों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगी। तुम कुछ भी बोलो यार अमित।
पापा ने तो कब से हाँ कर दी है, लेकिन बस मम्मी को मनाना ही बाकी रह गया है।
तो फिर अंकल को कहो ना कि वे आंटी को मनाए।
वैसे तो पापा अपने रिटायर होने के दिनों में हैं, इसलिए वे अकेलापन ही पसंद करने लगे हैं। फिर तुम तो जानती हो मम्मी के आगे पापा की चलती कहाँ है।
फिर
चिंता ना करो तुम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शिखा जैसी लड़की मुझे पसंद नहीं है। फिर शादी के लिए दुनिया में क्या एक शिखा ही बची है तुम्हारे लिए? मैं उससे कहीं अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी तुम्हारी।
आखिर आपको शिखा पसंद क्यों नहीं है?
मैं कह चुकी हूँ, पसंद नहीं है तो नहीं है। हर एक चीज का कारण नहीं होता है।
और बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता।
मैं कह चुकी हूँ तुमसे।
तो फिर मुझसे ही सुन लो वह कारण जिसकी वजह से आप शिखा से नफरत करती हैं। और वह कारण है अपनी कॉलेज लाइफ में आपका शिखा के पापा से एक तरफा प्यार में पड़ना और उनका शिखा की मम्मी से शादी कर लेना। बस इसी बात को आपने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, इसीलिए आप अपनी उस हार को मेरी शादी से मना करके अपनी जीत में बदलना चाहती
हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम?
मैं सच कह रहा हूँ माँ। कभी कभी अतीत पर पड़ी समय की धूल को वर्तमान की आंधी भी उड़ा देती है और अतीत एक बार फिर सामने होता है।
तुम सच कहते हो बेटा, पर मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं।
यह इंसान की फितरत है माँ, जब वह हालातों से हार जाता है और उनका सामना नहीं कर पाता है तो उनसे समझौता कर लेता है।
मगर जिस कटुता को मैंने सालों साल अपने दिल की दीवारों में कैद करके रखा है, एक ही झटके में उसे दिल से निकाल कैसे सकती हूँ मैं?
आप किसी से नफरत और उसकी कटुता का बोझ कब तक यूं ही ढोती रहेंगी? आपने जब ये कटुता पाली होगी तब से लेकर अब तक नदियों में कितना पानी बहकर यहाँ से वहां हो गया और आप अब भी वहीं की वहीं खड़ी हैं।
मगर बेटा वो...
आपने भी कभी प्यार किया है माँ, आपको उसी प्यार का वास्ता। किसी को पा लेने और किसी को खो देने की खुशी और दर्द आप अच्छी तरह से समझती हैं। मान भी जाओ माँ।
ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में अब और अधिक बाधा नहीं बनना चाहती। कल हम शिखा के घर जरूर चलेंगे।
ओ माँ, यू आर अ ग्रेट मदर।
नमस्ते आंटी, आइए आइए। मम्मी देखो कौन आया है।
अरे जया, तुम आज यहाँ? आओ आओ बैठो।
नमस्ते आंटी।
नमस्ते बेटा। हाँ जया, और सुनाओ आज मेरे गरीब खाने पर कैसे? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के।
वीणा, मुझे भी तुमसे मिलकर उतनी ही खुशी हो रही है। कैसी हो वीणा तुम?
अच्छी हूँ, तुम सुनाओ।
क्या सुनाऊं वीणा, ये वक्त ही है जो एक दूसरे से अलग भी कर देता है और एक दूसरे से मिला भी देता है। मुझे माफ कर देना वीणा, मैं तुम्हारे दुख का कारण बनती रही
और अब आपकी खुशी का कारण बनने जा रही हैं आंटी।
हाँ वीणा, मुझे भी शिखा बेटी और अमित का रिश्ता मंजूर है।
अरे बधाई हो जया, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ही ली।
इतने सालों के बाद मैं आज रात हल्की होकर बहुत सुख की नींद सो पाऊंगी, वरना मेरे सीने पर एक बोझ सा था जिसके लिए मैं इतने सालों घूमती रही। सचमुच किसी को माफ कर देने से मन कितना हल्का और खुशी से भर जाता है।
सच बताऊं, मेरा भी मन जैसे हल्का होकर हवा में उड़ने लगा है।
कटुता, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, अपर्णा सिंह, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।